12 अगस्त दिन बुधवार, नमस्कार भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। मैगी मामले में कंपनी के खिलाफ भारत सरकार ने किया 640 करोड़ रुपए जुर्माना का दावा। क्या मुलायम सिंह का बयान संसद में विपक्षी दलों के बीच फूट का संकेत है? हालांकि सपा ऐसा नहीं मानती।
हमने कभी भी सुषमा जी का इस्तीफा नहीं मांगा था, चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मांगा था। हम शुरू से बात कर रहे थे कि हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम चर्चा चाहते हैं। हमारा आज वही स्टैंड, हमारे स्टैंड में बदलाव कहां पर से आया?
और भारत में औरतों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच क्या वैचारिक स्तर पर इस मामले पर कोई गंभीर चर्चा हो रही है?
उनके दिमाग में कुछ बड़े बने बनाए से चौकते हैं जिनमें वो चीजों को बांध कर कस कर देखते हैं और भी जो आक्रामकता है।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया से सरकार 640 करोड़ रुपए का हर्जाना वसूलने की तैयारी में है। हर्जाना का दावा, कारोबार में उचित तरीका नहीं अपनाने, झूठा लेबल लगाने और भ्रामक विज्ञापन के आधार पर किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग में मामला भी दर्ज करा दिया गया है। नाइजीरिया की सेना का कहना है कि बोनो प्रांत के साबुन गारी नगर के एक बाजार में धमाका हुआ है। इस घटना में कम से कम 47 लोग मारे गए हैं और 50 लोग घायल हुए हैं। नाइजीरिया के इलाकों में इस्लामी चरमपंथी संगठन बोको हराम सक्रिय है और विद्रोह चला रहा है। मई में नाइजीरिया में राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के सत्ता संभालने के बाद से 800 से ज़्यादा लोग ऐसी हिंसा में मारे जा चुके हैं। अमरीकी जांच एजेंसियों ने हैकिंग के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच अधिकारियों के अनुसार यह सभी कंपनी की घोषणा के सार्वजनिक होने से पहले ही हैकिंग के जरिए उसे चुरा लेते थे और खरीदारों को बेच दिया करते थे। पिछले 5 सालों में इन हैकरों ने करीब 150 घोषणाओं को हैक किया है। सरकारी वकील पॉल जे फिशमैन ने एक प्रेसवार्ता में बताया कि किस तरह से ये हैकर खरीदारों को जानकारी मुहैया कराते थे, जिससे कि वो ये तय करते थे कि स्टॉक खरीदने हैं या उन्हें बेचना है। उन्होंने कहा, जैसे ही वो कोई जानकारी चुराते थे, वे उसे देश के बाहर एक सर्वर में डाल देते थे जो खरीदारों की पहुँच में होता था। इसके बाद वो उन खरीदारों को एक ईमेल भेजते थे जिसमें उन्हें पूरी जानकारी मुहैया कराई जाती थी कि उस सर्वर में उन्हें कहाँ जाना है और उस जानकारी को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी वकील पॉल जे फिशमैन के शब्द। अधिकारियों ने यूक्रेन और अमेरिका में मौजूद खरीदारों और हैकरों के इस गठजोड़ को अपवित्र गठबंधन करार दिया है। उनके अनुसार एक बार तो कई खरीदारों ने इस तरह की जानकारी की मदद से केवल एक घंटे में करीब $10,00,000 यानी करीब 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हैकर अधिकतर बैंक ऑफ अमेरिका और कैटरपिलर नामक कंपनी को अपना निशाना बनाते थे। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वैश्यावृत्ति को अपराध की श्रेणी से निकालने के हक में वोट दिया है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में आयोजित की गई संस्था की एक बैठक में इस पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही इस प्रस्ताव में यह भी मांग रखी गई कि यौन कर्मियों को शोषण, तस्करी और हिंसा से कानूनी संरक्षण मिले, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं और घरेलू सेवाएं भी मुहैया कराई जानी चाहिए। हालांकि इस मत का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इससे मानव तस्करी को और बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एसोसिएशन की महासंघ ने कहा है कि उसने जांच के बाद 28 खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी की पहली सभा में श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम को, जैसा कि हम पहले भी बताते रहे, हमारी वेबसाइट और बीबीसी के मोबाइल, आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। लाइव रेडियो पर तो सुनते ही रहे, आप हमसे जुड़े हैं लंबे वक्त से। जो मैगी खाते होंगे या ना खाने वालों को भी शायद याद होगा कि मैगी के प्रोडक्ट्स में लीड पाए जाने के नाम पर भारत सरकार ने दावा किया था, जिसके बाद 2 मिनट नूडल्स, जिसे लोग जानते हैं इस नाम से, कई राज्यों में इस पर बैन लगा दिया गया था। भारत सरकार ने गलत दावा करने और ग्राहकों को धोखा में रखने के नाम पर इसने कंपनी से करोड़ों रुपये का जुर्माना मांगा है। एक रिपोर्ट सुने अमल चौधरी से।
मैगी विवाद में फंसी नेस्ले इंडिया पर सरकार 640 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में शिकायत भी दर्ज करा चुका है। मंत्रालय करीब 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून में एक प्रावधान के तहत यह शिकायत कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस दौरान कंपनी पर वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ अन्य कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। ये शिकायत भारतीय उपभोक्ताओं की तरफ से दाखिल की जाएगी। इसमें कंपनी द्वारा अनुचित व्यापार और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए हर्जाने की मांग की जा रही है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लिए गए मैगी नूडल्स के नमूने में सीसे की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाए जाने के बाद इस साल मई और जून में देश के कई राज्यों में इसके नमूनों का परीक्षण किया गया था। बड़ी संख्या में नमूनों में सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई, जिसके बाद 5 जून को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने देश भर में मैगी के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो अभी भी जारी है। मैगी का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में भी उठा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मैगी के नमूनों में सीसे की मात्रा 2.5 ppm की तय सीमा से ज्यादा पाई गई। इसके साथ ही कंपनी ने MSG की मात्रा को लेकर भी भ्रामक जानकारी मुहैया कराई। विभिन्न राज्यों की प्रयोगशालाओं में सीसे व MSG की मात्रा ज्यादा पाई गई, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
रिपोर्ट सुना रहे थे अमल चौधरी। और मैगी के बाद अब राजनीति का रुख करते हैं। 2 दिनों पहले मुलायम सिंह यादव के बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रही है, और क्या इसे संसद में विपक्ष की एकता में दरार के तौर पर देखा जाना चाहिए। पिछले दिनों से कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने का काम किया है, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित होती चली गई। लेकिन अब क्या होगा, आगे सुनिए सलमान रावी से।
सोमवार को जब समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने सदन में लगातार हो रहे गतिरोध पर अपनी नाराजगी जताई थी, तो इसे विपक्ष में पैदा हो रही फूट के संकेत के रूप में देखा जाने लगा। व्यापम घोटाले और सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा चल रहा है। सोमवार को मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा था कि वो गतिरोध खत्म करने के लिए कांग्रेस और सरकार के बीच मध्यस्थता तक करने को भी तैयार हैं।
इस पक्ष में हैं कि सदन चले, और ये ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ।
बुलाया है आप सबको, बुलाया है
आप। इनके नेताओं को मुझे बुला लीजिए, उधर के नेताओं को बुला लीजिए, अभी बात हो जाए।
समाजवादी पार्टी के अलावा कई और विपक्ष के दलों ने भी संकेत देने शुरू कर दिए थे कि वो भी नहीं चाहते कि संसद में गतिरोध ज्यादा दिन तक चले। इतने संकेत काफी थे और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को मानो झट से लपक लिया हो। मंगलवार को पार्टी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव की प्रशंसा भी कर डाली। मुलायम सिंह के बयान और प्रधानमंत्री के धन्यवाद के बीच BBC से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा,
ये तो कंट्रोवर्सी खामखा मीडिया चुस्त करके कर रही है। हमने कभी भी सुषमा जी का इस्तीफा नहीं मांगा था, चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मांगा था। हम शुरू से बात कर रहे थे कि हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम चर्चा चाहते हैं। हमारा आज वही स्टैंड, हमारे स्टैंड में बदलाव कहां पर से आया? हमारी कोई अपोजिशन की यूनिटी थोड़ी टूट गई है। अपोजिशन में तो हर एक, जैसे रूलिंग पार्टी में शिवसेना कुछ बोल देती है, तेलुगु देशम कुछ बोल देता तो क्या है, अलग थलग हो गई।
हालांकि कांग्रेस ने विपक्षी दलों के बीच किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा फूट डालने की ही है। कांग्रेस के नेता शकील अहमद कहते हैं,
नहीं, मुझको नहीं लगता है कि ये टूटती हुई नजर आ रही है। वो एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन अपोजिशन ने अभी तक तो साथ दिया ही है और सब लोग मिलके काम करेंगे। और उनकी चालाकी है, मुलायम सिंह यादव जी इतने एक्सपीरियंस लीडर हैं कि वो मोदी जी की तारीफ से खुश नहीं होने वाले हैं। और जाहिर है कि ये शातराना चाल है ये, कि नहीं तो BJP का और मुलायम सिंह जी की पार्टी का एक तरह से क्या आंकड़ा है ये पूरे मुल्क के लोगों को मालूम है।
हालांकि तृणमूल कांग्रेस और NCP सहित कुछ एक और विपक्ष के दल हैं जो कई मुद्दों पर सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। दबी जुबान से कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मुलायम की मध्यस्थता की पहल उन्हें नागवार जरूर लगी है, मगर मौजूदा हालात में कांग्रेस सबको साथ लेकर ही चलना पसंद करेगी। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
और अब राजनीति की कुछ और बातें। इस बार बात मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल के दिनों में कहते रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में नौकरियों में भारी गोरखधंधा हुआ। वो ये बात व्यापम मामले के सिलसिले में कहते रहे हैं। व्यापम, जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर जो पूरा घोटाला है या घोटाले का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसी के सिलसिले में है ये। लेकिन एक आरटीआई में कुछ दूसरा पहलू भी सामने आया है। भोपाल से सूर्य न्याजी ने ये रिपोर्ट भेजी है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर आमने सामने हैं। व्यापम मामले को लेकर लगातार हो रहे हमले के बाद शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान लोगों को उन्होंने पर्चियों पर ही नौकरी दे दी। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों को लेकर स्वयं निशाने पर हैं। आरटीआई कार्यकर्ता के जरिए मिली जानकारी से पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान भले ही दिग्विजय सिंह पर आरोप लगा रहे हों लेकिन वो किसी भी तरह से उनसे अलग नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में बगैर किसी नियम के अपनी नोटशीट पर लोगों को नौकरी दिलवा दी। आरटीआई कार्यकर्ता सिद्धार्थ गुप्ता आरोप लगाते हैं।
मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस के इशारे पर संवैधानिक नियमों के विपरीत जाकर नियुक्तियां करी हैं। ना इसके लिए कोई विज्ञापन जारी हुआ, ना इसके लिए कोई नोटिस जारी हुआ। सीधा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक नोटशीट बुलवाई गई और उस नोटशीट पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ये इनका एक कृत्य आपराधिक श्रेणी का भी है और पद के दुरुपयोग का भी मामला है।
अक्टूबर 2010 की मुख्यमंत्री की एक नोटशीट में लिखा है, श्री अशोक टंडन का बायोडाटा संलग्न है। श्री टंडन को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए जाने के आदेश जारी किए जाएं। इसी तरह की कई और नोटशीट के जरिए उन्होंने अपने चहेतों को नौकरी दे दी। सिद्धार्थ गुप्ता कहते हैं कि इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए जिससे पता चल जाएगा कि किस तरह से लोगों को नौकरी बांटी गई है।
जो भी नियमों के विपरीत जाकर जो नियुक्ति की है उन सारी नियुक्तियों की जांच कर उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जाए।
इन नियुक्तियों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस या भाजपा, वो नियुक्तियों के मामले में मनमाना तरीका अपनाते हैं।
भोपाल से ये थे शुरा न्याजी। और अब बात सुंदर पिचाई साहब की, जिनका जिक्र कल से हर तरफ हो रहा है। सोमवार को गूगल ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग योजना पेश की जिसके तहत अब गूगल की सारी लोकप्रिय गतिविधियां नई कंपनी अल्फाबेट के तहत संचालित होंगी और गूगल के संस्थापक लैरी पेज इसके चीफ एग्जीक्यूटिव यानी सीईओ होंगे। वहीं अब तक गूगल में वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया गया है, यानी कि वो गूगल के अब प्रमुख होंगे। चेन्नई में जन्मे पिचाई के पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। मैंने थोड़ी देर पहले बात की बर्कले यूनिवर्सिटी में विजिटिंग स्कॉलर शाश्वती दत्ता से और उनसे पूछा कि गूगल को पिचाई से क्या हासिल करने की उम्मीद है।
2004 में उन्होंने शुरू किया था गूगल के साथ काम करना एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। गूगल का जो सर्च इंजन, जो उनका की कॉम्पिटेंसी है, जो सिर्फ टूल बार हुआ करते थे और वहां से गूगल क्रोम आए, उसके बाद जो लुक्रेटिव सर्च इंजन वो बना, जितना रेवेन्यूज आया उनका डिफरेंट एड से, उसके बाद एंड्रॉयड लॉन्च हुआ एज अ मोबाइल डिवाइसेस के लिए, तो ये सब के पीछे जो इंजीनियरिंग था, प्रोडक्ट रीऑर्गेनाइजेशन था, ये सबके पीछे पिचाई साहब का कंट्रीब्यूशन रहा है। वो अपना यूनिट जो था उसको आगे ले गए, ये नहीं कि गूगल में और जो टीम्स काम करते थे उनको नीचा करके, नहीं, वो उनको सबको साथ ले जाके वो मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, बिजनेस तीनों को कंबाइन बहुत सक्सेसफुली कर पाए हैं। और लैरी पेज के वो राइट हैंड होके काम करते गए पर अपने आप को कभी वो लाइमलाइट में नहीं लाए।
तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी कंपनी, सिर्फ अपना जो डिवीजन था उसको छोड़ के पूरी कंपनी के ऊपर एम्फेसिस दिया और शायद ये जो है पसंद आई कंपनी के लैरी पेज को और बाकी लोगों को। अब एक चीज ये सवाल होगा कि यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, पिचाई साहब के सामने नई चुनौतियाँ क्या होंगी इस वक्त?
एक तो ये है कि उनको एप्पल के साथ कंटेंट करना पड़ेगा, जिसका कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जो कि बहुत ज्यादा इनरोध किए है, वेयरेबल डिवाइसेस में वो काफी इनरोध किए है। वो गूगल का ये जो पोजीशन वो बनाए है उनको बरकरार रखना होगा और काफी और इनोवेशन करना होगा, ताकि वो जो यूजर्स है वो यूजर फ्रेंडली, उसको जितना ज्यादा और यूजर फ्रेंडली कर पाएंगे उतना ही गूगल का लोगों में वो होगा कि वो गूगल यूज करें। और एक और है कि जो रिलेशनशिप उसका है, चूंकि एंड्रॉयड एक उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है गूगल इनका, तो उसका गूगल का वो किस तरह से रिलेशनशिप आगे जाते हुए बनाते जाते हैं।
शाश्वत जी, एक सवाल ये है कि अगर हम पहले देखें तो इंदिरा नूई को देखें और उसके बाद गुप्ता साहब को सिटी बैंक में, हालांकि वो तजुर्बा बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं रहा एक तरह से, एक किस्म कह सकते हैं कि क्या इंडियन मैनेजर्स जो हैं या इंडियन ओरिजिन के जो मैनेजर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है बड़ी कंपनियों में, एमएनसीज में, और उसकी क्या वजह आपकी नजर में हो सकती है, क्या खास वजह?
एक ये भी है कि इंडियन सभी पहले वो लाइमलाइट में उतना नहीं आते थे, वो अपना सिर्फ काम करते जाते थे, हो सकता है कि वो बिग ऑफर्स उनके पास उतना नहीं आए, पर अभी इंडिया जो है एज अ मार्केट वो बड़ा मार्केट है। जैसे ये जो कंपनीज आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे सत्या नडेला, या हम अगर पिचाई साहब की भी बात करेंगे, तो ये जो कंपनीज है वो समझते हैं कि इंडिया इज अ बिग यूजर और वो अपना जो है वो मार्क बना के आ रही है।
ये थी बर्कले यूनिवर्सिटी में विजिटिंग स्कॉलर शाश्वती दत्ता और वो बात कर रही थी सुंदर पिचाई के बारे में, जो गूगल के सीईओ बनाए गए हैं। और अब नज़र डालेंगे अखबार क्या कह रहे हैं। अमल चौधरी बताइए
जी। फैजल जी, अगर आज अंग्रेजी अखबारों का रुख करें तो लगभग सभी के पहले पन्ने पर मानसून सत्र में चल रहे हंगामे की खबर है। द हिंदू ने शीर्षक दिया है सप्ताह भर की मशक्कत के बाद उम्मीद की किरण। यहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मतलब कि जिस तरह से कांग्रेस का समर्थन किया है उसको यहाँ पर उन्होंने शीर्षक बनाया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस लिखता है प्रधानमंत्री ने कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस भारत के सपनों को नुकसान पहुँचा रही है, भाजपा को रोकने के लिए संसाधनों का भी गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं द टेलीग्राफ लिखता है कांग्रेस ने मोदी पर उंगली उठाई, सरकार ने जीएसटी बिल पेश किया। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स का शीर्षक है जीएसटी बिल पर कांग्रेस ने सरकार को राज्यसभा में रोका। हालांकि इन सबके तहत टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे से जुड़ी एक बहुत ही छोटी सी खबर प्रकाशित की है और शीर्षक दिया है मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की और मुलायम सिंह को सराहा। वहीं हिंदी अखबारों के पहले पन्ने की बात करें तो नई दुनिया का शीर्षक है 40 सांसद मर रहे हैं, 440 का हक, यह प्रजातंत्र की हत्या है।
मार रहे हैं
जी, मार रहे हैं।
और जो इस, कि स्पीकर ने
जी जी, इस शीर्षक में अखबार ने लोकसभा में जो स्पीकर हैं उनका उनके बयान को कोट किया है। और दैनिक भास्कर ने भी ठीक सेम टू सेम इसी तरह की हेडिंग दी है दैनिक भास्कर ने भी। वहीं नव भारत टाइम्स लिखता है हंगामे में अटका जीएसटी। वहीं हिंदुस्तान हिंदी ने भी लोकसभा स्पीकर के बयान से ही शीर्षक को शुरू किया है। और अन्य खबरों की बात करें तो गूगल के जो नए सीईओ हैं सुंदर पिचाई की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। वहीं दिल्ली के सीएनजी घोटाले में जांच के आदेश दिए जाने की भी खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। साथ ही आधार कार्ड अब सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कैरोसिन व एलपीजी की सब्सिडी के लिए ही जरूरी होगा, इस खबर को भी लिया गया है। वहीं हिंदुस्तान में एक बहुत ही अच्छी सी एक खबर है कि जिसका शीर्षक यह है कि जाम से हर साल 600 अरब रुपए का नुकसान होता है। और इस खबर के अनुसार जाम में जो वाहन फंसे होते हैं उनमें 20% लगभग ज़्यादा ईंधन का ईंधन उसमें खर्च होता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जो राधे माँ की जो मामला चल रहा है उसमें उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। दूसरी तरफ इसमें खबर है कि असीमानंद की बेल से मोदी सरकार को एतराज़ नहीं। जी
बहुत बहुत शुक्रिया अमल चौधरी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक नज़र डालते हैं कि आज किन किन मुख्य खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी।
रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव बुधवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता सीरिया और यमन में जारी हिंसा और खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन पर भी चर्चा कर सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारिफ अपनी 2 दिन की लेबनान यात्रा बुधवार से शुरू करेंगे। इस दौरे में वो प्रधानमंत्री तमाम सलाम और देश की शक्तिशाली शिया पार्टी हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्लाह से भी मिलेंगे। इस क्षेत्र में मुस्लिम धर्म के दो प्रमुख समुदायों शिया और सुन्नियों के बीच लड़ाइयों का सिलसिला जारी है। बिहार के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। बिहार में भाजपा का चुनाव अभियान देख रहे रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि भाजपा नेता इस यात्रा के दौरान राज्य के आम लोगों से मिलेंगे। यह यात्रा 27 अगस्त को खत्म होगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव आज पत्रकारों को संबोधित करेंगे। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए वाले बयान के जवाब में दोनों नेता शब्द वापसी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके बारे में इस प्रेस वार्ता में चर्चा की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में रैली के दौरान कथित रूप से नीतीश कुमार के डीएनए पर टिप्पणी की थी। जवाब में नीतीश कुमार ने मोदी के नाम पर एक पत्र लिखा था, जिसके बाद बिहार की राजनीति में काफी हंगामा हुआ था। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेलेगी। यह मैच गोल में स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होगा।
और अब आज की खास रिपोर्ट। पिछले दिनों एक लड़की को मनचले युवक ने चाकू से गोद कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के कुछ दिलफेक लड़कों ने लड़की के पिता को यहाँ तक बात बढ़ गई कि जिंदा ही जला दिया। पढ़े लिखे लोगों को अच्छी वेशभूषा में अगर अच्छी पोशाक पहनी हुई तो आईएएस अधिकारी भी आई कैंडी दिखती है। तो बलात्कार और यौन शोषण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी ये सवाल पैदा करे कि आखिर महिलाओं की स्थिति क्या है हमारे समाज में, और क्या वैचारिक स्तर पर ऐसी कोई बहस या चर्चा जारी है कि हम अपने समाज में महिलाओं की दशा और भूमिका को समझ सकें और उसकी बेहतरी के लिए काम कर सकें। प्रगति सक्सेना की रिपोर्ट।
पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का। देखा गया हमको जैसे कुफ्त हो नींदे, देखी जाती है कलाई घड़ी। सुना गया हमको यों ही उड़ते मन से, जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। आंकड़े बताते हैं कि हिंदी बेल्ट में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं महिलाओं द्वारा अपनी पहचान को बनाने और परिभाषित करने के उदाहरण भी बढ़े हैं। ये समझ पाना मुश्किल है कि हिंदी भाषी समाज में स्त्रियों की क्या भूमिका, क्या दशा थी, रही है और है। नारीवादी लेखिका अर्चना वर्मा के मुताबिक,
त्रिविमर्श का एक बहुत भावुक वाला सा जो होता है हिसाब किताब, वो है मित्र सत्ता में औरत की हालत पे हाहाकार जैसा, और थोड़ा एक हर चीज का राजनीतिक समाधान। बाकी जहाँ तक वैचारिकी की बात है, उस पर अनामिका मृणाल पांडे एक मेरी भी किताबें हैं, तो लेकिन सिद्धांत ज्यादातर सब इम्पोर्टेड कहे जा सकते हैं। सीमांध बोवा के उठाए हुए सवाल, जो उग्र स्त्रीवाद के हिस्से के कुछ पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल वाली, जो बस वहाँ तक उतना ही।
वही कवि और नारीवादी लेखिका अनामिका का कहना था कि हिंदी में स्त्री विमर्श है तो, लेकिन वितरण या अन्य समस्याओं के कारण पाठक तक नहीं पहुंच पाता। फिर हिंदी को लेकर कुछ पूर्वाग्रह हैं कि हिंदी भाषी विमर्शात्मक लेखन नहीं कर सकते।
ये माना जाता है कि जो अपनी भाषाओं में लिखेगा, पढ़ेगा, चिंतन करेगा, उसमें इतनी बौद्धिक ऊर्जा नहीं होगी या इतना बौद्धिक संयम नहीं होगा या अकादमिक संयम नहीं होगा कि उसको सोशियोलॉजिकल और समाजशास्त्रीय विमर्शों का आकार दे सके। और अंग्रेजी में पढ़ने वाले लोग यही कहते रहते हैं कि वो जो भाषा का है विमर्श, वो तो बहुत ही कच्चा है।
नारीवादी लेखिका अर्चना वर्मा के मुताबिक, हमारा स्त्री विमर्श बहुत उथला और रहन सहन तक ही सीमित है।
असल में देखिए, स्थिति ये है कि हमारा जो हिंदी भाषी समाज, वो अभी भी भले ही वो आकर दिल्ली में रह रहा हो, दूसरे बड़े शहरों में रह रहा हो, उसकी मानसिकता अभी भी लोअर मिडिल क्लास मुफस्सिल टाउन जैसी है। तो उनके दिमाग में कुछ बड़े बने बनाए से चौकटे हैं जिनमें वो चीजों को बांध कर कस कर देखते हैं। और भी जो आक्रामकता है सड़क पर, स्त्री के लिए आक्रामकता है, वो स्त्री की आक्रामकता के जवाब में भी है और उसके पहले भी है। तो वास्तविक स्थिति तो वो है जो चल रही है, पर जो फेसबुक पर हमको या सोशल मीडिया में या अखबार में बोलती हुई औरत दिखाई देती है, वो बिल्कुल इस समाज से उसका भी खास बहुत कोई सीधा साबका मुझको ऐसा नहीं लगता कि पड़ता है। और जैसे ही ऐसा दिखता है कि कोई चीज हमारे विरोध में है, तो पॉलिटिकली करेक्ट ये हो गई है स्थिति कि औरत के पक्ष से हमको टूट पड़ना चाहिए।
दिक्कत ये है कि साहित्य में स्त्रियों की भूमिका, उनकी दशा पर बहुत से किरदार और कहानियां मिलती हैं, जिनकी बौद्धिक स्तर पर चर्चा होती रहती है, लेकिन सैद्धांतिकी और वैचारिक स्तर पर इसका कोई सिलसिलेवार ब्यौरा नहीं मिलता। पत्रकार और समाजशास्त्री अभय दुबे कहते हैं कि इसकी एक वजह यह भी है कि हिंदी अपेक्षाकृत नई भाषा है।
हिंदी में साहित्य के जरिए जो स्त्री विमर्श विकसित हुआ है वो बहुत दिलचस्प है और उसके अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से नए पहलू हैं जिनको अगर बौद्धिक रूप से विकसित किया गया, अकादमिक रूप से विकसित किया गया तो वो आमतौर पर नारीवाद के अंदर एक मौलिक योगदान भी आगे चल के माने जा सकते हैं।
तो क्या स्त्री विमर्श उत्पीड़ितों और शोषितों के विमर्श तक ही सीमित है या नारीवादी चिंतन दरअसल खुद में इन मुद्दों को समेटे हुए है?
स्त्री विमर्श की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके आंचल के नीचे सिर्फ अपने मुद्दे नहीं रहे हैं। सन 60 से स्त्री विमर्श शुरू हुआ था, उस समय से आप देख रहे हैं कि हमेशा एक बड़ा मुद्दा स्त्री आंदोलन के साथ जुड़ा रहा, निःशस्त्रीकरण का मुद्दा, रंग भेद की नीति का मुद्दा, दलित चिंतन का मुद्दा और उसके अलावा पर्यावरण की चिंता, भूमंडलीकरण की चिंता।
एक हद तक यह सही भी है कि शोषितों के संदर्भ में स्त्री पर चर्चा की जाए, लेकिन स्त्री एक आर्थिक सामाजिक वर्ग ही नहीं मानव समाज की आवश्यक इकाई है। 19वीं सदी में जे.एस. मिल ने स्त्री पुरुष संबंधों को एक वाक्य में परिभाषित किया था कि स्त्री पुरुष की अंतरंग और प्रिय दास है। करीब 150 साल बाद भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। साहित्यिक विमर्श से निकलकर वैचारिक जमीन पर महिलाओं की भूमिका और उनके ऐतिहासिक सामाजिक उत्थान या पतन को पुनर्भाषित किया जाए तो शायद हम भी नारीवाद को एक फैशन या प्रचलन की तरह नहीं बल्कि एक ठोस विचारधारा की तरह देखें, ताकि अनामिका के इन शब्दों को हम स्त्रियां असल जिंदगी में भी महसूस कर सकें। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग, सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा।
प्रगति सक्सेना की ये डायरी कैसी लगी आप हमें जरूर लिखिएगा। और अब सुनिए खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। भारत और श्रीलंका के बीच आज से हॉल में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने साल 1993 में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में श्रीलंका से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीती थी। जाहिर है 22 साल बाद विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम सीरीज जीतने के लिए जी जान लगा देगी। अजिंक्य रहाणे मानते हैं कि बिना किसी दबाव में खेलना ही सही रहेगा।
मोटो यही होगा कि हम टेस्ट मैच जीते और टेस्ट सीरीज जीते तो।
अजिंक्य रहाणे ने श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ शतक जमाकर अपने फॉर्म में होने के संकेत दिए हैं। वहीं रोहित शर्मा भले ही अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं लेकिन टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि रोहित शर्मा नंबर 3 पर ही खेलेंगे। रोहित शर्मा अपने आक्रामक रवैये को लेकर कहते हैं,
एज ए बैटिंग ग्रुप हमारे सारे बैट्समैनों का एम ये होता है कि हमको डोमिनेट करना है, पॉजिटिव खेलना है। जितने भी स्पिनर्स बॉल डाल रहे हैं हमारे अगेंस्ट हमको उनको डोमिनेट करना है।
दूसरी तरफ श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज अपनी फिटनेस की समस्या से जूझ कर टीम में वापसी कर रहे हैं। वैसे इस सीरीज में सबसे बड़ा आकर्षण श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा हैं, जिन्होंने अभी तक 132 टेस्ट मैचों में 38 शतक की मदद से 12,305 रन बनाए हैं और साथ ही विकेट के पीछे 182 कैच और 20 स्टंप भी कर चुके हैं। कुमार संगकारा दूसरे टेस्ट मैच के बाद क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल भारत की साइना नेहवाल हांगकांग की यी चियुंग नगान का सामना करेंगी। वहीं पुरुष एकल वर्ग में भारत के पी कश्यप वियतनाम के गुएन तियेन मिह का सामना करेंगे। इनके अलावा के श्रीकांत चीन ताइपे के हंसू जेन हाओ से टक्कर लेंगे। आज ही महिला युगल वर्ग में भारत की स्टार जोड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा भी चीन ताइपे की जोड़ी का सामना करेंगी।
और एक बार फिर से सुनिए विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया से सरकार 640 करोड़ रुपए का हर्जाना वसूलने की तैयारी में है। हर्जाने का दावा कारोबार में उचित तरीका नहीं अपनाने, झूठा लेबल लगाने और भ्रामक विज्ञापन के आधार पर किया गया है। नाइजीरिया की सेना का कहना है कि बोर्नो प्रांत के साबुन गारी नगर के एक बाजार में धमाका हुआ है जिसमें कम से कम 47 लोग मारे गए हैं और 50 लोग घायल हुए हैं। अमरीकी जांच एजेंसियों ने हैकिंग के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच अधिकारियों के अनुसार यह सभी कंपनी की घोषणा के सार्वजनिक होने से पहले ही हैकिंग के जरिए उसे चुरा लेते थे और खरीदारों को बेच दिया करते थे। पिछले 5 सालों में इन हैकरों ने करीब 150 घोषणाओं को हैक किया है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वैश्यवृत्ति को अपराध की श्रेणी से निकालने के हक में वोट दिया है। बीबीसी समाचार।
इस कार्यक्रम को का तकनीकी पक्ष संभाला था राजेश चौहान ने। अगली मुलाकात 8 बजे होगी विश्व भारती के साथ। आप चाहें तो हमें हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।